का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी कुएं का राज, और इसके लेखक हैं जासूसी दुनिया के बेताज बादशाह इब्ने सफी। आइए सुनते हैं भाग एक। गर्मी के मौसम की एक सुहानी रात के लगभग 11 बजे थे। नवाब रशीदुज्जमा ने अपने नए मेहमान के साथ ही बाग में खाना खाया था और खाना खाने के बाद से अब तक बैठे उसके सफर की दास्तानें सुन रहे थे। उनका मेहमान तारिक अधेड़ उम्र का एक तंदुरुस्त आदमी था। उसने सफ़ेद पतलून और आधी आस्तीनों की सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। गठे हुए बाजुओं की उभरी हुई मछलियाँ चीख चीख कर ये ऐलान कर रही थीं कि वो एक मेहनती आदमी है। गोरे लाल चेहरे पर घनी और ऊपर की ओर चढ़ी हुई मूछें उसकी शख्सियत को रौबदार बना रही थीं। आँखें छोटी और चमकदार थीं। नवाब साहब के यहाँ बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उससे आंखें मिलाकर बात करना आसान काम नहीं है। वो खुद ज्यादातर अपनी नजरें नीचे ही रखता था। वो एक सैलानी था और घुमक्कड़ी की वजह से हमेशा एक राज ही रहता था। वो नवाब साहब का जिगरी दोस्त था, लेकिन उन्हें भी उसके सैलानीपन की वजह मालूम ना हो सकी थी। इस बारे में जब भी कोई बात आती तो वो हमेशा काट कर कोई और बात छेड़ दिया करता। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो पुराने खजानों की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। वो अच्छे खासे दौलतमंद आदमी की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन उसकी आमदनी का जरिया किसी को भी मालूम नहीं था। नवाब साहब से उसकी पहली मुलाकात भी अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। 7-8 साल पहले नवाब साहब पूर्वी मुल्कों की सैर करने के लिए लगभग 2 साल का प्रोग्राम बनाकर निकले थे। ईरान की सरजमीन उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि लगभग 6 महीने उन्होंने वहीं बसेरा डाले रखा। ईरान की दिलकश पहाड़ियां, हरी भरी और खूबसूरत वादियां उनके पैरों में बेड़ियां बनकर रह गई थीं। ईरान की ऐतिहासिक इमारतों ने भी उनको बड़ी हद तक अपनी तरफ खींच रखा था। एक शाम जब वे ईरान के एक पुराने बादशाह के महलों के खंडहर से गुजर रहे थे, उन्हें एक जगह पत्थर के ढेर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ नजर आया। उन्होंने घबरा कर चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। वे सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद उनके सामने एक बेहोश आदमी पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। करीब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। वे बेहोश आदमी को उठाकर उसके किनारे ले गए और फिर लगभग आधे घंटे तक जूझने के बाद उसे होश आया। ये तारिक था। उसने बताया कि अचानक एक पुरानी दीवार के ढह जाने की वजह से वो दब गया था। वो नवाब साहब को अपने घर ले गया। नवाब साहब को उसकी शख्सियत में अजीब तरह की कशिश मालूम हुई और वे उसके करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो तारिक भी उनके साथ हो लिया। उसके बाद दोनों साथ साथ सैर करते रहे। तारिक की शख्सियत बहुत ही अजीब और गरीब थी। वो अरबी नस्ल का था, लेकिन दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जो वो ना जानता हो। कई भाषाओं पर तो वो इतनी महारत रखता था कि उस भाषा के बोलने वाले उसे अपने देश का बाशिंदा समझ बैठते थे। जब वो नवाब साहब से हिंदी उर्दू में बात करने लगता तो वे भी यही महसूस करते कि वो कोई यूपी एमपी का निवासी हो। 2 साल में नवाब साहब उसके बहुत ज्यादा करीब आ गए और दोनों बड़े अच्छे दोस्तों की तरह घुल मिल गए। हिंदुस्तान आते वक्त उन्होंने उससे कहा था कि किसी भी मौके पर अगर वो हिंदुस्तान आए तो कुछ दिन नवाब साहब के साथ जरूर गुजारे। और इस वक्त वो उनके बाग में बैठा उन्हें अपने सफर की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा ऊँग रहा था। एक अजीबो गरीब नेवला कम से कम नवाब साहब और उनके घर वालों की नजरों से आज तक ना गुजरा था। वो लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग काला था और पीठ पर 3-4 लंबी लंबी धारियां थी। नवाब साहब की लड़की गजाला बहुत देर से बेचैन नजर आ रही थी। वो उस नेवले के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन तारिक की बातों का सिलसिला किसी तरह खत्म ही ना हो रहा था। थोड़ी देर बाद गजाला ने महसूस किया कि जैसे वो बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश देखते ही वो झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तारिक मुस्कुरा कर बोला, मैंने इतना खौफनाक नेवला आज तक नहीं देखा। हाँ, ये कम ही मिलते हैं और एशिया में तो इनका वजूद ही नहीं है। मैंने इसे ब्राजील के जंगलों से पकड़ा है, उस वक्त ये बच्चा था। तो क्या ब्राजील में इस किस्म के नेवले होते हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं, ये वहाँ भी बहुत कम मिलते हैं, तारिक ने नेवले की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा।
अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है।
वो क्या? इसे तुम कोई भी चीज़ सुंघा दो तो पाताल से भी ढूंढ कर ले आएगा।
अच्छा, तो फिर हमें ये तमाशा आप दिखाएंगे?
गजाला ने कहा।
हाँ, जब कहो।
तो लीजिए, मेरा रुमाल सुंघाइए, मैं उसे कहीं छुपा कर आती हूँ। तारिक ने हंसकर रुमाल ले लिया और नेवले की नाक पर रख कर फिर गजाला को वापस कर दिया। गजाला कोठी के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई।
अच्छी तरह छुपा दिया है ना? तारिक ने हंसकर पूछा।
देखिएगा, खूब अच्छी तरह। तारिक ने नेवले को ज़मीन पर उतार दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला,
जा ऋषि।
नेवला दौड़ता हुआ कोठी की तरफ चला गया। सब लोग हैरान होकर कोठी की तरफ देखने लगे। कुछ मिनटों के बाद वो लौटा, उसके मुंह में गजाला का रुमाल था।
अरे,
सबके मुंह से एक साथ निकला। तारिक हंसने लगा। गजाला की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं।
अरे, मैं इस रुमाल को अपनी किताबों की अलमारी में ताला लगा कर आई थी,
वो हैरत से बोली। अरे, ताला इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, तारिक ने कहा।
लेकिन इसने तुम्हारी खूबसूरत अलमारी जरूर बर्बाद कर दी होगी।
वो कैसे? उसमें कम से कम इतना बड़ा छेद हो गया होगा कि जिसमें ये आसानी से जा सके।
इतनी जल्दी इतना बड़ा छेद कर देना भाई, मुझे तो नामुमकिन मालूम होता है,
नवाब साहब बोले। अलमारी के तख्ते ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच मोटे होते होंगे, ये तो अच्छे खासे शहतीर मिनटों में काट देता है।
आपकी तो हर चीज बड़ी अजीबोगरीब है,
गजाला ने हैरत से कहा। तारिक मुस्कुरा कर खामोश हो गया। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे कि सारे बाग में उजाला हो गया। गजाला ने पलट कर देखा और चीख मार कर उछल पड़ी। पुराने अंधे कुएं से अंगारों का एक सोता सा फूट पड़ा था। शोले काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। एक अजीब किस्म की झन्नाटेदार आवाज से सारा बाग गूंज रहा था।
ये क्या था? तारिक जल्दी से बोला और उसके नेवले ने भी इतनी भयानक चीख मारी कि सबके जिस्म कांप गए।
वे सब के सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश थे। धीरे धीरे अंगारों की बौछार कम होती गई और थोड़ी देर के बाद बाग का माहौल पहले जैसा शांत हो गया।
ये क्या तमाशा था?
तारिक ने खामोशी तोड़ी। गजाला शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगी।
अरे, मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ,
नवाब साहब मरी हुई आवाज में बोले।
मालूम होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है।
क्या मतलब? तारिक ने पूछा।
मैंने वालिद साहब मरहूम की जबानी सुना था कि एक बार दादा के जमाने में इस कुएं से अंगारे निकले थे, फिर एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया था।
अजीब बात है, मैं जाकर देखता हूं,
तारिक उठते हुए बोला।
नहीं नहीं, उधर मत जाओ।
क्यों?
मालूम नहीं क्यों, मगर मत जाओ।
तारिक हंसकर आगे बढ़ गया। उसका नेवला एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था।
जरा एक टॉर्च तो मंगवाइए, उसने कुएं में झांकते हुए कहा।
अरे भाई, मैं कहता हूं लौट आओ।
टॉर्च!
तारिक चीखा, उसकी आवाज में कंपकपाहट थी। नवाब साहब ने एक नौकर से टॉर्च मंगवाई।
यहां ये
तारिक टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हुए बोला। रशीदुज़्ज़मा दिल मजबूत करके आगे बढ़े। गजाला ने भी उनके साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया।
वो देखिए क्या है,
तारिक ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। रशीदुज़्ज़मा चीख मारकर पीछे हट गए। उनके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था।
क्या है अपाजन?
गजाला उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली।
जाओ जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ।
नवाब रशीदुज़्ज़मा पलट कर चीखे। नवाब साहब की हालत इतनी डरावनी थी कि गजाला एकदम से कोठी की तरफ मुड़ गई। अब क्या किया जाए? तारिक बेचैनी से हाथ मलते हुए बोला।
भाई, मेरे तो होश ही ठिकाने नहीं है,
नवाब साहब कुएं की जगत के करीब जमीन पर बैठते हुए बोले।
आखिर मामला क्या है?
खुदा ही बेहतर जानता है।
तो क्या आपकी याददाश्त में इस कुएं से कभी चिंगारियां नहीं निकली?
नहीं, ये वालिद साहब के बचपन की बात है।
तो क्या आपने ये जिंदगी में पहली बार देखा है?
हाँ,
नवाब साहब की आवाज कांप रही थी। वे इस वक्त किसी किस्म के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थे।
तभी कोठी के अंदर से अजीबोगरीब किस्म के शोर और आवाजें सुनाई देने लगी। अरे ये क्या, तारिक चौंक कर बोला। नवाब साहब भी हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। शोर बढ़ता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कई गीदड़, कुत्ते, उल्लू और ना मालूम कौन कौन से जानवर एक साथ चीख रहे हैं। साथ ही साथ आदमियों का शोर भी सुनाई दे रहा था। दोनों दौड़कर कोठी की तरफ लपके। अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे वो आवाजें दीवारों से निकल रही हों। इतना जोरदार शोर था कि कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। इतने सारे जानवर यहां कैसे घुस आए, तारिक ने कहा। उसका नेवला उछलकर उसके सीने से लिपट गया। नवाब साहब इस तरह कांप रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो गई हो।
न जाने क्या क्या बात है।
तारिक एक एक कोना तलाश करता रहा लेकिन चीखने वाले जानवरों का कोई पता न चला। तभी नवाब साहब का सौतेला भाई उछलता कूदता हुआ आ गया। वो उन आवाजों को सुन सुनकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उसकी उम्र 40 साल से कम नहीं थी लेकिन उसने अपनी हालत बच्चों जैसी बना रखी थी। उसके हाथ में दूध पीने की शीशी थी। वो उछल कूद कर थक जाता तो शीशी से दूध पीने लगता। उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा माएं अपने बच्चों के गले में इसलिए बांध देती हैं ताकि उनके कपड़े मुंह से बहने वाली लार से बच सकें।
भाई साहब क्या तमाशा उड़ा है,
वो तालियां बजाता हुआ तुतला तुतला कर बोला।
चुप रहो, भाग जाओ यहां से।
वो फिर दूध पीते बच्चे की तरह सहम कर घुटनों के बल चलता हुआ कमरे में घुस गया। धीरे धीरे शोर कम होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तारिक और नवाब साहब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हालांकि वो संदिग्ध शोर अब खत्म हो चुका था तो भी कमरों में छिपे हुए लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि बाहर निकल आते।
क्यों भाई तारिक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है।
तो क्या ये शोर पहली बार।
हाँ भाई हाँ, बिल्कुल पहली बार। किसी खानदानी रवायत से भी पता नहीं चलता कि इससे पहले भी इस कसम का कोई हादसा पेश आया हो।
तब तो फिर वाकई बहुत हैरत की बात है।
मगर अब क्या करना चाहिए।
कर ही क्या सकते हैं। मुझे तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम होता है।
मगर वो कुआं,
ऐसे मामले में कुछ भी हो सकता है।
तो फिर इस मामले में पुलिस क्या कर सकती है,
गजाला ने बैठी हुई आवाज में कहा। शोर खत्म होने के कुछ पलों के बाद वो उन्हीं दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी।
जाओ जाओ तुम, सो जाओ,
नवाब साहब बोले। क्या आज की रात किसी को नींद आ सकती है।
क्यों क्यों नहीं आ सकती,
ऐसी तो कोई खास बात नहीं है।
अच्छा सुनो, तुम यही गजाला के पास ठहरो, मैं थाने जाके आता हूं।
नहीं, आप किसी और को भेज दीजिए ना अब्बाजान, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप बेकार थाने जा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी।
तारिक तुम्हारे पास है, डरने की कोई बात नहीं, मैं फौरन वापस आ जाऊंगा।
तो किसी और को भेज दीजिए।
ओहो, तुम समझती नहीं हो कि मेरे गए बगैर काम नहीं बनेगा।
थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज आई।
आखिर अब बताते क्यों नहीं कि अब्बा जान थाने किस लिए गए हैं,
गजाला ने तारिक से पूछा। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तारिक ने कहा।
अगर ये सब कल भी हुआ तो।
कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम अपने कमरे में चलो। वो गजाला का बाजू पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका नेवला अब उसके कंधे पर बैठा अपनी चमकीली आंखों से चारों तरफ देख रहा था। अब तुम लेट कर सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूं, तारिक उसे पलंग पर बिठाकर खुद एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला।
नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी,
गजाला ने कहा। आएगी कैसे नहीं, मैं अभी तुम्हें सुलाए देता हूं। गजाला ने डरी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, मैं तुम्हें हिप्नोटिज्म के जरिए सुला दूंगा।
ओह, तो क्या आप हिप्नोटिज्म भी जानते हैं।
हाँ, चलो लेट जाओ। ठीक, इस तरफ। हाँ, अब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, सो जाओ। तुम सोती जा रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। गजाला को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आंखों से बिजली की लहरें निकलकर उसके जिस्म में चली गई हों। जहन सुस्त होता जा रहा था, पलकें बोझिल, अंधेरा, और अब उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आवाज बहुत दूर से आ रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है, तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है। और धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो गहरी नींद में सो गई। तारिक थोड़ी देर वहां बैठा उसे देखता रहा, फिर उठकर चला गया। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, आंखों और कनपटियों से ऐसा मालूम हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। कमरे में घुसे हुए लोग इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कि वे तहखाने में दुबके हुए बमबारी का इंतजार कर रहे हों। तारिक फिर बाग में आ गया। वो थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ कुएं के करीब गया। उसके हाथ में दबी हुई टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तभी उसके होठों पर एक भेद भरी मुस्कान आई और वो फिर कोठी की तरफ रवाना हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद नवाब साहब एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबलों के साथ वापस आए। कुएं में कई टॉर्चों की रोशनी एक साथ पड़ी और नवाब साहब के मुंह से चीख निकल गई। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा।
तो क्या मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा?
आपने तो कहा था,
सब इंस्पेक्टर बोला।
हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। आप जो कुछ देख रहे हैं वो भी ठीक है।
सब इंस्पेक्टर हंसने लगा और नवाब साहब के चेहरे पर झल्लाहट पैदा हो गई।
आपने तो फरमाया था कि औरत की लाश।
मैंने गलत नहीं कहा था, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे मेहमान ने भी देखी थी।
इतने में दो तीन नौकर आ गए। लाश का जिक्र सुनकर वो बुरी तरह कांपने लगे। एक घंटे के अंदर अंदर उन्हें अजीबो गरीब बातों से वास्ता करना पड़ा।
अब जाओ, जरा तारिक साहब को बुलाओ,
नवाब साहब ने एक नौकर की तरफ देखकर कहा। तारिक को देखकर इंस्पेक्टर ने अजीब समूह बनाया। तारिक से ज्यादा वो उसके काले नेवले को घूर रहा था जो अभी तक तारिक के कंधे पर बैठा हुआ था।
आपने भी तो औरत की लाश देखी थी ना,
नवाब साहब ने तारिक से कहा।
और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बयान दूं, तारिक ने सब इंस्पेक्टर से कहा।
क्यों?
इसलिए कि मैंने नवाब साहब के जाने के बाद एक बार फिर कुएं में झांका था और इस बार मैंने औरत के बजाय मर्द की लाश देखी थी। अरे
जी हाँ।
और अब वहां कुछ भी नहीं है,
नवाब साहब ने बेताबी से कुएं की तरफ झांकते हुए कहा।
अच्छा, क्या मतलब,
तारिक ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ा। दूसरे ही पल उसके टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तारिक ने जोरदार कहकहा लगाया और सब लोग उसे हैरत से देखने लगे। गजाला आपको पहले ही मना कर रही थी, भला भूतिया मामले में पुलिस क्या कर लेगी।
क्या इसी कुएं से चिंगारियां निकल रही थी?
जी हाँ।
तब तो ये खुला हुआ मामला है, हम लोग इसमें भला क्या कर सकेंगे। और जो कुछ भी आवाज का आपने जिक्र किया था वो?
जी हाँ, वो सारी आवाजें कोठी के अंदर से आ रही थी।
शायद मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ,
सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा। जी हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, सब इंस्पेक्टर अब तक नेवले को घूर रहा था। घबराइए नहीं, ये मेरा पालतू नेवला है।
बहुत ही अजीबो गरीब है। अच्छा तो नवाब साहब, इजाजत चाहूंगा।
क्या बताऊं भाई, मैंने बेकार में ही आपको तकलीफ दी,
नवाब साहब ने हाथ मलते हुए कहा।
कोई बात नहीं, मैं तो आपका खादिम हूं। अलबत्ता इस बात का जरूर अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत ना कर सकूंगा।
पुलिस वाले नवाब साहब की कार से वापस चले गए। नवाब साहब, तारिक और कुछ नौकर अभी तक कुएं के पास खड़े हुए थे जहां नौकरों के सामने लाश के बारे में बातें हुई थी। इसलिए कुछ ही पलों में यह खबर सारी कोठी में फैल गई।
भाई तारिक, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा।
जी हाँ, मैं मैं खुद हैरान हूँ, तारिक ने कहा। उसकी आंखों की चमक अचानक पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। एक बार मैं भी मिस्र में ऐसे ही वाकया से दो चार हुआ हूँ, तारिक फिर बोला।
अगर वाकई ये भुतहा मामला है तो फिर इससे छुटकारा किस तरह मिल सकेगा?
बहुत आसानी से। क्या आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जो खराब रूहों को भगाने का काम जानता हो? नवाब साहब कुछ सोचने लगे।
भाई मैं तो बहुत परेशान हूं। बात दरअसल ये है कि मैं इन चीजों को मानता ही नहीं, मगर हादसे ऐसे पेश आए हैं कि कुछ कहते सुनते ही नहीं बन पड़ता।
नहीं, आपको इन चीजों को मानना चाहिए क्योंकि खराब रूहों का वजूद होता है, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारते हुए कहा।
क्या वाकई नवाब रशीदुज़्ज़मा की कोठी का कुआं किसी प्रेतात्मा के काबिज है? क्या है इन सारे कुएं की लाशों के रहस्य? जानने के लिए सुनिए भाग दो सिर्फ गाथा पर।